તારીખ 11/7/1997 શ્રી સ્વાનુભૂતિ દર્શન પ્રશ્ન 200 અને 201 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 146
સ્થૂળ ઉપયોગ કા વિસ્તાર ક્યા ये ठीक है, परंतु सूक्ष्म उपयोग के विषय में थोड़ा विस्तार करने की कृपा कीजिए। 199 में स्थूल उपयोग की बात किया कि उपयोग स्थूल क्यों है, तो स्वरूप को नहीं ग्रहण करता है, परसत्ता का अवलंबन लेता है और अपना स्वरूप को ग्रहण नहीं कर सकता, सूक्ष्म स्वरूप को ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए वो सूक्ष्म नहीं है, स्थूल है
जी।
वो ठीक है। अब जो बात है कि सूक्ष्म उपयोग का स्वरूप क्या है
जी,
प्रश्न क्या हुआ, जो उपयोग आत्म स्वरूप को ग्रहण करता है
जी,
उसका स्वरूप क्या है, उसकी सूक्ष्मता का स्वरूप क्या है
जी।
समाधान, स्वयं के भीतर में उपयोग जाए तो ही उपयोग, जो उपयोग सूक्ष्म है, जो उपयोग दिशा बदलता है, क्या करता है
जी,
दिशा बदलता है, वो बाहर की दिशा है, ऐसे वो ऐसे स्वसन्मुख होता है, भीतर में उपयोग जाता है, स्वरूप में प्रदेश प्रदेश में व्यापक व्यापक रूप से अपना स्वरूप का अनुभव करता है, वो उपयोग सूक्ष्म है। स्वयं के सन्मुख हो जाए कि मैं यही चैतन्य हूँ, मैं यह मैंने प्रत्यक्ष, मैं प्रत्यक्ष चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य दृढ़ हूँ, यह ज्ञायक हूँ, मैंने प्रत्यक्ष ज्ञायक हूँ, ऐसा अपना स्वभाव के प्रति उपयोग जाए
जी,
तो उसकी दिशा बदलती है, अतः इस उपयोग को सूक्ष्म कहने में आता है। दिशा बदलती है और जो सूक्ष्माति सूक्ष्म स्वरूप है उसको वो ग्रहण करता है सूक्ष्म होकर के। संसार में भी जो भी टेक्निकल लाइन है उसमें उपयोग बारीक होता है कि नहीं
होता है,
कोई भी फिर भी वो रूपी पदार्थ की बात है, संसार का कार्यों में क्या है, रूपी पदार्थ की बात है। यह आत्मा तो अरूपी चैतन्य है, बाहर के पदार्थ रूपी जड़ है
जी,
और आत्मा अरूपी चैतन्य है
जी,
बहुत सूक्ष्म स्वरूपी है, सूक्ष्म स्वभावी है, अंतर्मुख की दिशा होकर के स्वभाव को ग्रहण करने वाला उपयोग सूक्ष्म कहने में आता है, पर है भी सूक्ष्म। स्थूल उपयोग की दिशा तो बाहर ही बाहर है, जो स्थूल उपयोग है वो परसन्मुख है, अन्य पदार्थ को, शास्त्र को या अन्य पदार्थ को विषय करता है, अपने अरूपी तत्व को, अपना अरूपी तत्व को ग्रहण करे तो उसकी अंतर में दिशा मुड़ जाए, जो सूक्ष्म उपयोग है। क्या कहा? अपना अरूपी तत्व को ग्रहण करे, अपने अपना अरूपी तत्व को विचार में ले, वो बात नहीं किया, ध्यान देने योग्य बात है। हर जगह वो ग्रहण करने की बात करते हैं। ग्रहण करना मैंने क्या कि अपने रूप अनुभव करना, अपने को इन्वॉल्व कर देना। जैसे कोई टॉन्टिंग करते हैं तो बात तो दूसरे की होती है और दूसरे को लागू पड़ती है, दूसरे की बात दूसरे को लागू पड़ती है। जिसको लागू पड़ती है वो क्या करता है? ग्रहण कर लेता है कि ये मेरे को बोला जाता है, तो अपने जात को इन्वॉल्व कर देता है, अपने आप को इन्वॉल्व करता है कि नहीं करता है। तब उनको अच्छा बुरा लगता है, कुछ भी फीलिंग आता है। जहाँ तक अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किया जाता, शामिल नहीं किया जाता है, तब तक फीलिंग नहीं आती। जानने से फीलिंग नहीं आती, ग्रहण करने से फीलिंग आती है। तो क्या कहा कि अपने अरूपी तत्व को ग्रहण करे, अपने रूप में ग्रहण कर ले, तो दिशा बदल जाती है, अंतर्मुख की दिशा हो जाती है और उपयोग सूक्ष्म बन जाता है। कैसा हो जाता है उपयोग? सूक्ष्म हो जाता है। अंतर में जाकर के स्वभाव को ग्रहण करे, वह उपयोग सूक्ष्म है जी। ये बात अनुभव करके वो बता रहे हैं
जी,
कि अंतर में जाकर के स्वभाव को ग्रहण करे, वह उपयोग सूक्ष्म है। देखो, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे
जी,
ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उस उम्र में तो पढ़ाई थी का, 13-14 साल की उम्र में तो शादी हो जाती थी लड़कियों से। अभी 20-25-30 साल तक पढ़ते हैं, पहले तो वो बात नहीं थी। तो पढ़ाई तो थी नहीं, लेकिन उपयोग अंदर में सूक्ष्म कर लिया, भीतर में अंदर में जाकर के स्वभाव को ग्रहण किया। पढ़ा लिखा काम कर सकता है या अनपढ़ काम कर सकता है, वो बात नहीं रही। जो अंदर में जाकर के स्वभाव को ग्रहण करे, वो उपयोग सूक्ष्म है। और वो काम ऐसा है कि अनंत जन्म मरण को नाश कर देता है। धीरा हो करके, कैसे धीरा हो करके, मतलब चंचलता को छोड़ करके, इधर उधर की उपयोग की चंचलता है वो बहिर्मुखता तीव्र गति से चल रही है। जिसके उपयोग में चंचलता ज्यादा है, उसकी बहिर्मुख परिणाम की स्थिति जोर से चल रही है, तीव्रता से चल रही है, वो उपयोग भीतर में अंदर मुड़ने में समर्थ नहीं। लेकिन जो धीरा है, शांत है, धीरा है, धीरे में क्या है, एक तो चंचलता नहीं है और एकाग्रता की तैयारी है धीरे में। जिस स्वभाव और स्वरूप में एकाग्र होना है उसकी तैयारी है धीरज में। धीरज से जो काम होता है वो साउंड काम होता है, और उतावली में जो काम होता है वो साउंड नहीं होता है, ठीक नहीं होता है। चंचलता है तो बाह्य पदार्थ के का मूल्य ज्यादा देते हैं, तुल ज्यादा देते हैं, तो चंचलता बनी रहती है। हमारे जो भी संयोग है उस पर हमारा वजन ज्यादा रहता है, तो परिणाम बार बार वहाँ चंचल होकर के लगे रहेंगे। परिवार के बीच में, समाज के बीच में, सबके बीच में रहते हुए भी हमें अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि हम अकेले हैं। हमारा जन्म भी अकेला हुआ है, हम बीमारी या कुछ टेंशन आता है तो दुख भी अकेले भोगते हैं, राजी होते हैं तो सुख भी अकेले भोगते हैं, मरेंगे तो भी अकेले मरेंगे, स्वर्ग में जाएंगे तो भी अकेले जाएंगे, और दुर्गति में जाएंगे तो भी अकेले जाएंगे, और मोक्ष में जाएंगे तो भी अकेले जाएंगे। एक बहुत बड़ी कल्पना दृढ़ कर ली है कि हम जिन लोगों के बीच में, जिनका हमारा संबंध गिना जाता है, माना जाता है, उनकी पकड़ हमको बहुत रहती है, तो उपयोग चंचल बना रहेगा। तो उपयोग भीतर में जा सकता तो बार भावना में एकत्व भावना है, क्या है एकत्व भावना है, हम अकेले हैं, और अशरण भावना है, हमको कोई हम सुरक्षा दे सकता नहीं है, कोई हमको सुरक्षित नहीं कर सकता, बाहर में कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारी सुरक्षा करे। वैसे स्वरूप से हम स्वयं अपने आप सुरक्षित है ही, अपना स्वरूप का नाश कोई नहीं कर सकते, लेकिन हमने तो स्वरूप को स्वीकार किया नहीं, हमने तो ये शरीर संयोग को स्वीकार किया, और शरीर संयोग तो सुरक्षित रहने वाला है ही नहीं, ये बात पक्की है। फिर भी हमारी जो पकड़ है तो पकड़ के कारण से हम अंदर में जा सकते नहीं है, ये भी एक विचित्र परिस्थिति है कि जो भी संयोग है वो कुछ समय के लिए है, पहले थे था नहीं वो संयोग, आगे रहेगा नहीं वो संयोग। कुछ समय पहले ये संयोग थे नहीं हमारे, और कुछ समय के बाद वो संयोग रहने वाले नहीं है। ये ट्रेन का डिब्बा है, कुछ लोग साथ में आ जाते हैं डिब्बे में, एक डिब्बे में सफर करते हैं, एक डिब्बे में कभी झगड़ा कर लेते हैं, कभी साथ में नाश्ता कर लेते हैं, डिब्बे में क्या करते हैं है? बैठने में जगह का गड़बड़ हो गया तो झगड़ा कर लेंगे, और कुछ व्यवस्था ठीक हो गई कि चलो नाश्ता करेंगे, आप भी थोड़ा लीजिए, बोलेंगे आप भी थोड़ा लीजिए, फिर जान पहचान की बात चलेगी, जान पहचान निकल गई तो और खुशी होगी, अरे आपको हमारे फलाने फलाने के समझी है, ऐसे है वैसे है। स्टेशन आया तो अलविदा करेंगे, यहाँ तो कोई कहने को रुकते नहीं है कि हम जा रहे हैं, एक्सीडेंट भी चले जाते हैं, बोलते भी नहीं है कि हम जा रहे हैं, वहाँ तो थोड़ा इतना भी सौजन्य है, आपस में शिष्टाचार रहता है कि हम जा रहे हैं, कभी मिलिएगा, ऐसा है वैसा है, यहाँ तो बस खत्म है, जैसे कोई संबंध था ही नहीं। जब ये परिस्थिति खुल्लम खुल्ली है, क्या है, हम अच्छी तरह जानते हैं कि पहले ये संबंध थे नहीं, आगे रहने वाले है ही नहीं। अब इतने उचाट पड़ते हैं, इतने पकड़ में रहते हैं कि उस पकड़ के दौरान हमारे परिणाम दुर्गति के लायक हो जाते हैं। तो श्री गुरु बचाते हैं, ज्ञानी बचाते हैं कि ऐसा मत करो, जरा सोचो समझो बात को और धीरज से अंदर में चले जा, अपने को अकेला मान करके, जान करके धीरज से अंदर में चले जाओ। धीरा हो करके अंतर में देखे कि यह स्वभाव है और यह विभाव है, दो प्रकार के भाव है। ज्ञान है वो स्वभाव भाव है, और राग द्वेष मोह आदि अनेक प्रकार के चित्र विचित्र परिणाम है वो विभाव है, दो भाव है। कब मालूम पड़ता है कि धीरे से अंदर में देखने से, अंदर में देखने के लिए थोड़ी धीरज चाहिए।
यहाँ तो हमारे कोई परिवार नहीं है, फिर उद्योग बात है, यहाँ तो कोई हमारा परिवार साथ में लेकर नहीं है। हम दो दिन अगर हमारे याद भी नहीं आए हैदराबाद में क्या है, कभी याद नहीं, फिर भी उपयोग हम लेकर नहीं
जाते। ऐसा है कि आप उदय में उपयोग लगाते हैं तो वहाँ का उदय नहीं है, यहाँ का उदय है तो यहाँ का उदय में उपयोग आपका लगता है, तो बात तो वो की वो रही। वहाँ जो उदय था वहाँ उपयोग लगाते थे, यहाँ जो भी उदय है इधर उपयोग लगा रहे हैं, तो क्या फर्क किया आपने? ये कुछ नहीं फर्क किया, कहाँ से उपयोग लगेगा। दूसरी बात कि परिवार को साथ में नहीं ला रहे हैं और परिवार के विचार भी नहीं आ रहे हैं, मान लिया, परंतु परिणति तो बैठी है। परिणति में ये मेरे हैं, ये बात तो बैठ गई, बैठी है तो कहाँ मिटी है। जो परिणति जम गई है रस ले ले करके, तो परिणति तो वैसी की वैसी है, वो तो परिणति का नाश किया नहीं। तो परिणति उपयोग की डोर है, उपयोग तो एक पतंगा पतंग जैसा है, क्या पतंग इधर उधर आकाश में जाता है, डोर जिसके हाथ में है तो उसको खींचता है पतंग को। तो हमारी परिणति संसार की है तो उपयोग संसार के कार्यों में उदय में लगा रहेगा, उदय वही संसार है और क्या है। जो उदय है वो संसार है, पर मोक्ष मार्ग तो अनुदय अनुदय भाव है। जो मोक्ष का मार्ग है वो तो अनुदय भाव है, हमारे परिणाम उदय में लगे रहते हैं। तो बात तो संसार की वो की वो होगी, वो की वो रहेगी, कोई फर्क नहीं हुआ। हमने फर्क कहाँ किया है, हमने ये माना कि हम हैदराबाद का घर छोड़ करके इधर सत्संग भवन में आ गए भावनगर में, तो फिर फर्क किया क्या नहीं किया है। तो परिणाम में अगर उदय में परिणाम लगा रहता है तो कोई फिरफार नहीं किया, वहाँ उधर उस उदय में लगा रहते थे, इधर इस उदय में लगा रहता है। अनुदय परिणाम हो गए तब तो बात अलग है। इसलिए ये जो वेदना है वो अनुदय परिणाम है, क्या है, जो परिभ्रमण की वेदना है वो तो उदय के कारण से नहीं है, तो उदय के अनुसरण करके हमारे जो परिणाम हुआ उस परिणाम के विरुद्ध हमारा बड़वा है। बड़वा को क्या बोले हैं, बगावत है कि हमने ऐसा कैसे किया, ऐसे परिणाम हमने क्यों किया। 128 पत्र में चार पैराग्राफ आए कि नहीं, ऐसे परिणाम हमने क्यों किया, जिससे हमारा अनंत काल का परिभ्रमण चालू रहा, ऐसे परिणाम हमने क्यों किया, हम क्यों कर रहे हैं? इस हमारे परिणाम के सामने हमारी बगावत जब नहीं है, जब बगावत है वो उदय के कारण से नहीं है। ऐसा ऐसा कर्म हमने कभी बांधा नहीं, बगावत करने का बांधा कभी? ये नई लाइन पकड़ी हमने कि अब हमको संसार के परिणाम के सामने ही हमको हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई किसके सामने है? हमारे संसार के परिणाम जो है हमको संसार में रुलाते हैं, घुमाते हैं, इनके सामने हमारी लड़ाई है। यही हमारे भीतर के दुश्मन है। अरी 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 को दुश्मन कहते हैं, और हमारे भगवान का नाम भी अरिहंत है जिसने अरी को मार डाला है। लड़ाई कर कर के दुश्मनों को मार दिया, ऐसे महापुरुष को हम, ऐसे महात्मा को हम भगवान कह करके नमस्कार करते हैं। जिन्होंने दुश्मन को मारा उसको नमस्कार हो। चलो, हरिहंत का अर्थ क्या होता है? कि जिन्होंने दुश्मन को मारा उसको नमस्कार हो। लोग कहेंगे कि ये जैनी लोग क्या लड़ाई करते हैं, अंदर में लड़ाई करते हैं जैनी। जैन शब्द ही जीत करने वाले का है। किसका? जो जीतता है वो जैन है। हमारे विषय कषाय के मोह के जो परिणाम है, जो हमको दुख देते हैं, उनको अगर हम जीतते हैं तो हम जैन हैं। अगर उसमें हम हार जाते हैं तो अजैन है। जैन तो हमारी लड़ाई कैसी चलती है देखो। सुरवीर होकर के सम्रांगण में आ जाओ। सम्रांगण मैंने लड़ाई का मैदान, उसको सम्रांगण कहते हैं। हिंदी में कहते हैं मालूम नहीं, गुजराती में है
कुरुक्षेत्र
तो नाम है। लड़ाई हुई थी, महाभारत की लड़ाई हुई थी, वो क्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र है।
रणस्थल
रणस्थल कहते हैं, हमारे यहाँ सम्रांगण कहते हैं। लड़ाई में जाने के लिए तिलक करते हैं ये। जाओ लड़ाई में, भीतर में लड़ो अपने दुश्मनों से और जीत हो, जीत करके आ जाओ, जैन बन के आ जाओ। जीते वो जैन, और उस जिसको जो सबको मार डाले, जिंदा हुए ही नहीं कभी, उसको कहते हैं अरिहंत। हमारे सर्वज्ञ विद्राग परमात्मा जिनेश्वर देव का नाम है अरिहंत।
संकीत को भी जिन बोलते हैं।
हाँ, वो बस जीतने की शुरुआत कर दी। संकीत क्या करण लब्धि में आया, वो जिन जिन हुआ। तोडुमल जी ने क्या लिखा, गोमट सार कृतिका समाधान सम्यक ज्ञान चंद्रिका। गोमट सार कृतिका जो लिखी है उसका नाम है सम्यक ज्ञान चंद्रिका। करुणानुयोग का विषय में अध्यात्म की बातें लिखी हैं। करुणानुयोग में पांच लब्धियों का स्वरूप आता है। इसमें करण लब्धि का स्वरूप लिखते हुए कहा कि जो जीव अपूर्व करण में आता है, क्या तीन करण है ना, उसमें बीच का एक अपूर्व करण है। अपूर्व करण में आ गया वो जीन हो गया। क्यों जीन हो गया? कि जीनत्व प्राप्त कर लिया, इसलिए जीन हो गया। अब कुछ सेकंड में ही वो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेगा। करण लब्धि में आने वाले जीव को करण लब्धि के परिणाम में आयु पूरा नहीं होता कभी। क्योंकि सम्यक दर्शन अनंत आने वाला है, अनंतर समय में अंतर नहीं रहे, ऐसे समय में बीच में अंतर नहीं रहता। सीधा ही वो शुद्ध उपयोग समय दर्शन को प्राप्त कर लेता है, तो उसकी मृत्यु कभी करण लब्धि में नहीं होती। ऐसी बात ये काम अधूरा नहीं रहने वाला है, अपूर्व करण है ना, अपूर्व काम किया है तो वो काम अधूरा रहने वाला
नहीं।
फिर सदुपयोग में भले ही देह छूट जाए तो वहां तो काम हो गया। करणानुयोग की सूक्ष्म बात है, सम्यक दर्शन के होने के पहले कुछ सेकंडों में तीन प्रकार के जीव के विशुद्ध परिणाम होते हैं। बहुत सूक्ष्म काल है, केवल गम्य है, तो खुद को भी सम्यक दृष्टि को भी पकड़ने में नहीं आता, लेकिन ये भगवान की वाणी की परंपरा अनुसार जैन शास्त्र में वो बात अभी भी मौजूद है। तो कुछ सेकंडों के पहले वो करण लब्धि के तीन करण होते हैं, सेकंडों में तीन करण होते, तीन प्रकार के परिणाम होते हैं। उसमें अपूर्व करण का भी एक नाम है। तीन प्रकार के परिणाम में निचला बीच में अपूर्व करण में आता है तो कहते हैं कि वो जीन हो गया। कैसा हुआ जीन? हाँ, उसका नाम जीन रखा है टोडरमल जी ने। पूर्व भूमिका है, वो पूर्व भूमिका है। ऐसे अपने अपना स्वभाव को ग्रहण करें, विभाव को अपने रूप नहीं अनुभव करें, और ज्ञान को स्वभाव को ज्ञान में स्वभाव को अपने रूप में अनुभव करे ग्रहण करे तो वह उपयोग को सूक्ष्म कहने में आता है। इस तरह से उपयोग सूक्ष्म है और यही सिद्धांत है कि स्वरूप सेवन से ही सभी गुण प्रकट होते हैं और विकास को प्राप्त होते हैं। तो उपयोग स्वरूप में गया, स्वरूप का सेवन किया
जी।
तो सूक्ष्मत्व गुण भी प्रकट हुआ, उसका भी विकास हुआ, तो उपयोग सूक्ष्म हो गया। ये 200 हुआ, 201 जितनी निर्मलता बढ़ती है उतनी प्रयोजन की निज प्रयोजन की दृष्टि सूक्ष्म होती है, उतनी उतनी सूक्ष्मता बीच में आती रहती है। तो वो तो पूर्व भूमिका में सब तैयारी थोड़ी 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 होकर के फिर उपयोग एकदम सूक्ष्म होकर के स्वभाव को ग्रहण कर लेता है। निर्मलता आए बिना स्वभाव को ग्रहण करने का मलिन उपयोग में कोई सामर्थ्य
नहीं है,
ये बात तो जरूर है। दूसरा एक प्रश्न है कि विकल्पात्मक भाव भाषण यथार्थ कहा जाए, क्या कहते हैं विकल्पात्मक भाव भाषण यथार्थ कहा जाए? विकल्पात्मक मैंने कहा कि भाव भाषण की समझ होवे, बुद्धिग्राह्य होवे, स्वरूप का भाव भाषण इस प्रकार होता है सत्संग से स्वाध्याय से और कुछ प्रयोग से, पूर्व भूमिका के अवलोकन के कुछ प्रयोग से बुद्धिग्राह्य हो जाए कि भाव भाषण उसको कहते हैं, तो विकल्पात्मक भाव भाषण है। क्या है वो? विकल्पात्मक भाव भाषण है, यानी विकल्प के साथ जो बुद्धि है वो तो बुद्धि से होने वाला है, उसे व्यवहार से विकल्पात्मक भाव भाषण बुद्धि से होता है, उसे व्यवहार से यथार्थ कहने में आता है। समझ में भूल नहीं है, इसलिए क्यों यथार्थ किया? व्यवहार से समझ में भूल नहीं है। जब समझ में भूल नहीं होती है तो पुरुषार्थ है वो रॉन्ग साइड में, अन्यथा चलता नहीं। जैसे आपको बोला कि ये चीज इस कमरे में खो गई है, तो हम दूसरे कमरे में खोज नहीं करेंगे। हम आए थे, इसी कमरे में थे, और हम इधर उधर कहीं गए नहीं, चीज हमारी मिलती नहीं। तो हम कहीं गए नहीं, आए थे तो हमारे हाथ में थे, ऐसे कोई अंगूठी है वगैरह कुछ भी है, हाथ निकल गई। विचारात्मक, विकल्पात्मक मैंने विचारात्मक, तब कहीं और जगह अन्यथा प्रयत्न नहीं होता है। ज्ञान में ही ज्ञान स्वभाव है, राग में नहीं, देह में नहीं, दूसरे कुछ संयोग में नहीं, मंदिर में नहीं, शास्त्र में नहीं। स्वभाव कहाँ है? हमारे ज्ञान में, हमारा ज्ञान में हमारा ज्ञान स्वभाव है, अन्यत्र कहीं भी हमारा ज्ञान स्वभाव नहीं। इसलिए न हमें एक शास्त्र में खोज करना है, न मंदिर में जाके खोज करना है, न शरीर में खोज करना है, न शुभ भाव में खोज करना है, शुभ राग में खोज करना है। हमारे प्रयत्न का क्षेत्र सीमित हो गया। विकल्पात्मक भाव भाषण में क्या हुआ कि हमारी खोज का जो क्षेत्र है वो सीमित हो गया, इसलिए व्यवहार से वो यथार्थ कहने में आता है कि समझ बराबर है।
जैसे वो बुद्धि गम्य है तो उसमें ज्ञान की थोड़ी सी निर्मलता है। बुद्धि नहीं है, थोड़ी
सूक्ष्म बुद्धि है। ऐसा कुछ काउंट करने से क्या फायदा? कुछ हमने किया ऐसा
नहीं, वो
तो ऐसे हम बुद्धि से वो बात समझ लिया। अभी बात चली कि हमारे ज्ञान में योग में हमारा स्वभाव है मौजूद प्रगट व्यक्त, और जगह नहीं है, हमने समझ लिया। अब समझा तो ठीक है, और जगह हम प्रयत्न या पुरुषार्थ नहीं करें, खर्च नहीं करें, परिश्रम का खर्चा और जगह नहीं करें, लेकिन पुरुषार्थ करेंगे तब तो प्राप्ति होगी। अगर हमारा तुल ये रहा कि चलो उतनी तो निर्मलता हुई, उतनी तो सूक्ष्मता हुई,
तो समय आ
जाए वो करने लायक। एक आपको सिद्धांत दे देते हैं कि आप कुछ भी करो और कुछ भी करने से कुछ भी उपलब्धि हो जाए, आप गिनो ही मत। क्या? आप गिनो ही मत। ये गिनने की जो पद्धति है वो गिरावट में ले जाएगी। क्या? कहाँ ले जाएगी? परिणाम की गिरावट आ जाएगी। गिनो ही मत। क्यों? कि हमारा गोल है, हमारा आदर्श है, हमारा अंतिम लक्ष्य है, ध्येय है, वो पूर्ण शुद्धि का है, सिद्धालय में जाने का है, जहाँ तक हम विद्यालय में नहीं जाए हमको कुछ गिनना
नहीं
नहीं मुनिराज नहीं गिनते हैं, गंधर्व देव कुछ नहीं गिनते हैं, हम कुछ है ऐसा नहीं गिनते हैं। हम तो क्या है, गंधर्व देव भी नहीं गिनते हैं। क्यों? वो भगवान के सामने देखते हैं समोसरण में, अरे ये परमात्मा तो देखो
जी।
मैं तो पामर हूँ, पामर इसके पीछे है, मेरा क्या हिसाब लगता है इसके आगे। अनंतमा भाग में मेरा ज्ञान नहीं, अनंतमा भाग में मेरा पुरुषार्थ नहीं, अनंतमा भाग में मेरा सुख और शांति नहीं। हाँ धीमी धीमी धार से अमृत आता है, क्या धीमी धार से अमृत पीता हूँ, लेकिन मेरे को वो धीमी धार से आए वो पसंद नहीं है। मेरी तृषा तृषा ऐसी है कि पूरा शांति का समुद्र को मैं पी लूं, एक साथ पी लूं। समुद्र की तृषा है, उसमें धीमी धार कहाँ चले, वो भी संतोष नहीं लेते। जबकि उनको प्रचुर स्वसंवेदन है, सर्दी गर्मी को पता नहीं चलता उसको, अंदर में करंट चलता है, ज्ञान और आनंद का शांति का करंट चलता है, इतना जोर से चलता है कि बाहर की सर्दी गर्मी का पता नहीं लगता। इसलिए वो व्यवस्था का विकल्प उनको नहीं आता कि मेरी क्या व्यवस्था की आप लोगों ने, वो विकल्प उसको नहीं आता। तो दशा ऐसी है
जी।
उस दशा को नमस्कार करते हैं। बाकी तो पामर प्राणी तो सब सगवड़ अगवड़ सुविधा दुविधा देखेंगे, ये तो पामरों का काम है, ये तो महाराजा है, मिराज महाराज महाराजा है, वो तो ताकत है वो, फिर भी वो नहीं गिनते हैं। तो हम थोड़ा बुद्धि में बात आ गई तो गिनने लग जाए कि चलो निर्मलता हुई कि नहीं, सूक्ष्मता हुई कि नहीं, कुछ गिनने की बात नहीं है। कुछ भी हो गए, पूर्णता का लक्ष्य इसलिए प्रारंभ में कराया गया है। ये बात शुरुआत में क्यों, कि कहीं भी अटक होने का चांस नहीं रहे, वरना अटकेगा अटकेगा और अटकेगा कहीं ना कहीं। सम्यक दर्शन में देखो, अनंत काल में नहीं आया है ऐसा अपूर्व आनंद आया प्रथम बार, जब सम्यक दर्शन निर्विकल्प सम्यक दर्शन हुआ, आत्मा का आनंद गुण प्रकट हुआ। आत्मा में जो अनंत आनंद परमानंद भरा है उसमें से एक अंश बाहर आ गया, पाताल पानी निकला, स्रोत चालू हुआ, आनंद का स्रोत चालू हुआ। सम्यक दृष्टि गिनते नहीं, क्यों कि उसको उसने जिसका अनुभव किया है वह आनंद का महासागर है। आनंद का महासागर को देख लिया और स्वाद में थोड़ा सा बाहर आया, क्या गिनेगा, थोड़ा सा बाहर आया उसको गिनेगा, क्या वो सागर पड़ा है उस पर दृष्टि रखेगा, कहाँ रखेगा दृष्टि। इसलिए कभी सम्यक दृष्टि ध्रुव दृष्टि वाला द्रव को देख करके पर्याय को गिनते ही नहीं, क्योंकि पर्याय एक समय के और द्रव त्रिकाल, क्या गिनती लगाए त्रिकाल के आगे एक समय के पर्याय की, क्या गिनती करें, तो कुछ हिसाब लगता नहीं, उसका कोई हिसाब लगता नहीं। 0.00000 करके कितना जीरो लगावे लेकिन उसका हिसाब लगता नहीं। असंख्य अनंत जीरो लगावे तो भी पीछे कहाँ एक एक अंक रखना उसका हिसाब नहीं लगता, ये बात है। इसका नाम अनंतवा भाग है। Thank you. तो क्या कहते हैं कि विकल्पात्मक भाव भाषण बुद्धि से होता है, उसके व्यवहार से यथार्थ है, परंतु वास्तविक यथार्थ तो देखो वो वास्तविक अर्थ नहीं, व्यवहार यथार्थ है वो वास्तविक यथार्थ
नहीं।
यहाँ तो वास्तविक यथार्थ तो चैतन्य को ग्रहण करे तभी कहा अस्तित्व ग्रहण हो जाए, वेदन से अपनी मौजूदगी को अनुभव करे, बस यही वास्तविक भाव भाषण है।
ज्ञान सत्ता में पोतानी मौजूदगी में
अपने निज सत्ता को ग्रहण करता है, अपनी मौजूदगी को ग्रहण करता है, ये अस्तित्व ग्रहण है, तो सम्यक दर्शन का अंग है। क्या है? सम्यक दर्शन का एक अवयव है, कारण नहीं बोला, अवयव है। सम्यक दर्शन बाद में होगा, और आगम से तो व्यवहार कारण बोला जाए, न्याय से तो आगम का न्याय ले तो व्यवहार कारण है, वो व्यवहार पर्याय है, भाव भाषण है, वो व्यवहार है, निश्चय नहीं हुआ मान। लेकिन अध्यात्म में कहते हैं कि वो तो अंगभूत है। क्या है? तो अंगभूत है, सम्यक दर्शन का अंगभूत है, क्योंकि ऐसा भाव भाषण होने वाले को सम्यक दर्शन हुए बिना रहता।
चैतन्य ग्रहण करे इतने आध्यात्मिक शैली की बात करी थी।
हाँ, आध्यात्मिक शैली,
आगम शैली नहीं।
आगम में व्यवहार है ऐसा बोलेंगे, ये तो व्यवहार है, बुद्धि से निर्णय करे उसे व्यवहार से कहते हैं, परंतु वास्तविक पने अपने आप को ग्रहण करे तभी यथार्थ कहने में आता है। तो वो बुद्धि में विचार है। क्या है? स्पष्ट कर दें तो बुद्धि में विचार है, ग्रहण नहीं किया, ग्रहण किया वो बुद्धि से आगे जा करके परिणमन कर लिया। विचार में फर्क है, परिणमन में प्रत्यक्ष है, विचार में परोक्ष है, इतना बड़ा फर्क है, प्रत्यक्ष परोक्ष का बड़ा फर्क है। हाँ, बहुत बड़ा फर्क है। और जो बुद्धि से समझ करके महिमा आती है और जो भाव भाषण से महिमा आती है उसमें बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा महिमा में भी फर्क पड़ता है, रुचि में भी फर्क पड़ता है, इसलिए पुरुषार्थ में भी फर्क पड़ता है। पुरुषार्थ कब से जगता है? भाव भाषण से। सौभाग्य भाई कृपालु देव को प्रथम बार मिले तो बीज ज्ञान के भाव भाषण की चर्चा चली और कृपालु देव का स्वरूप सम्मुख का पुरुषार्थ स्टार्ट हो गया और महीना भर में सम्यक दर्शन को प्राप्त। इस प्रकार से निमित हुए उसका बहुत हाईली कंसिडरेशन किया उन्होंने सौभाग्य भाई का, उस निमित्त का
नमस्कार
कर दिया और इतना उसके प्रति सद्भाव रहा कि इस जीव को ज्ञान प्राप्ति अवश्य मेरे निमित्त से होनी
चाहिए,
और अगर ऐसा होगा तो ये मेरा सद्भाग्य मैं समझूंगा, ये मेरा सौभाग्य समझूंगा। तो इस सौभाग्य का अपने सौभाग्य के साथ मिलान किया। साइला वाले को मालूम पड़ना चाहिए। देखो साइला का सौभाग्य क्या है।
सौभाग्य से मालूम करा लो
वैसी बात है। दो सौ एक हुआ आशा। જેટલી જેટલી ચર્ચા આવી જાય છે સહાનુભૂતિ પ્રકાશ માં, એટલી સાઈન કરો કે ફરીને રિપીટેશન માં ના આવે ને. ઉદય ઓર ઉદય ભાવો કા રસ તોડતે ઉદાસીન હોકર કે उपयोग की स्थूलता का अभाव करके धीरज से भीतर में अपने स्वभाव को देख करके और विभाव से भेदज्ञान करके स्वयं को स्वयं के स्वभाव का ग्रहण करना चाहिए. यह ही सूक्ष्माते सूक्ष्म स्वभाव को ग्रहण करने वाला सूक्ष्म उपयोग है. બુદ્ધિ છે ભાવ ભાષણ કા વિષય માલુમ પડને પર ભી મુમુક્ષુ કો ઇસકે પર તૂલ દેના નહીં ચાહીએ. ક્યોંકિ વાસ્તવિક ભાવ ભાષણ તો અસ્તિત્વ ગ્રહણ મેં હૈ, અતઃ બુદ્ધિ કે વ્યાપાર સે આગે બઢ કરકે પ્રયોગ દ્વારા યથાર્થ ભાવ ભાષણ કા પુરુષાર્થ કરના ચાહીએ.